हम आयत मंदिरों 6 में नासिख और मनसूख की बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी बात अब अलग से करेंगे कि नसख क्या है और किस तरीके से इन आयात में उसका तذکرہ है, और इंसानों के किसी चीज़ को मनसूख करने का और अल्लाह ताला के कलाम में किसी चीज़ को बदलने का क्या फ़र्क है। हमने देखा कि इस आयत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक है ननसख और एक है नुनसिहा। ननसख का लफ्ज़ जो है ये नुस्खुन से है, लिखने को कहते हैं, नून सीन खा। उर्दू में आपने सुना होगा डॉक्टर साहब से नुस्खा लिखा ले, प्रिस्क्रिप्शन को कहते हैं, तो वही चीज़, क्योंकि वो लिख के दिया जाता है तो उसी से सामान ज़ाइल करने और इसके या तो किसी चीज़ को मिटा देना, वाइप आउट करना, रब करना, और या फिर लिखना, यानी बिल्कुल ऑपोजिट दोनों मानी होते हैं। इसी तरह नुनसिहा का लफ्ज़ जो है नसीया से है, भुला देना किसी चीज़ को, निसियान इसी से है। अगर हम दुनिया में देखें कि किसी किताब में या किसी हुक्म में पहले उसको कहा जाए, फिर उसको या तो बदल दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, इसकी तीन मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मसलन कोई हुकूमत है, कोई इदारा है, किसी हुक्म को मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म लाता है, उसकी एक वजह क्या होती है कि उसको असल हकीकत का इल्म नहीं था, उसने कानून बना दिया, बाद में हकीकत मालूम हुई तो हुक्म बदल दिया, ये एक वजह होती है। और कहीं भी आप सोच सकते हैं, आप दिन में कई बार अपने घर में ये नासिख और मनसूख का खेल खेलते रहते हैं, आज ये पका लेती हूँ, फ्रिज से आपने चले सब्ज़ी निकाली, सब्ज़ी पका रहे हैं, तभी नहीं था उस वक़्त तक कि क्या होगा, बाद में पता चलता है, फ़ोन आता है मियाँ का कि आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आपको फ़ौरन पता चला वो अच्छे मेहमान आ रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं कि आज हम गोश्त पका लेते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी पहली चीज़ को मनसूख किया। क्यों किया? क्योंकि आपको हकीकत नहीं मालूम थी उस वक़्त कि आपके घर में मेहमान आएंगे। दूसरी एक वजह ये होती है कि जिस वक्त ये हुक्म जारी किया होता है उस वक्त के हालात के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आगे आने वाले वाक़यात और हालात का अंदाज़ा नहीं था। इसको भी आप इसी में ही समझ सकते हैं कि जिस वक्त आपने दाल पकाने का या सब्ज़ी पकाने का इरादा किया उस वक्त आपको तो नहीं पता था, बाद में मेहमानों के आने की खबर सुन के हालात बदल गए, हालात बदले तो हुक्म भी बदलना पड़ा। एक तीसरी सूरत क्या होती है कि हुक्म देने वाले को अव्वल से ही ये मालूम था कि हालात बदलेंगे, उस वक्त ये हुक्म मुनासिब नहीं होगा। यानी जिसने हुक्म दिया उसको शुरू से ये भी मालूम था कि हालात बदलेंगे और उस वक्त ये हुक्म मुनासिब नहीं होगा। समझ में आ रहे? यानी जो बंदा कह रहा है कोई बात, उसको ये तो पता है कि आने वाले हालात बदल जाएंगे, और जो हुक्म मैं इस वक्त दे रही हूँ ये हुक्म उस वक्त के हिसाब से मुनासिब नहीं है और उस वक्त मुझे दूसरा हुक्म देना होगा। तो ये जानते हुए आज एक हुक्म दे दिया, और जब अपने इल्म के मुताबिक हालात बदले तो अपने पिछले हुक्म को बदल दिया। ऐसा भी होता है, इसकी मिसाल दूंगी तो फिर आपको बात ज़रा वाजे हो सकती है। मसा आप देखिए कि डॉक्टर साहब के पास एक मरीज़ जाता है, डॉक्टर साहब मरीज़ के हालात को देखकर एक दवा तजवीज़ कर देते हैं। उनको पता है कि ये दवा शुरू के 2 दिन मरीज़ को दिन में 3 बार खानी पड़ेगी, या इसकी एक ख़ास डोज़ है वट एवर, या ये दवा बस ये 2 दिन खा लें, फिर तीसरे दिन से इनकी दवा बदलनी है। डॉक्टर साहब को आज ही पता है, लेकिन वो ये नहीं करता कि मरीज़ को ये कहे कि ये लो ये 2 दिन की दवा है, आज खाओ 2 दिन खाओ, फिर ये तीसरी दवा खाना, फिर तीसरी खाना, बल्कि वो क्या कहता है, 2 दिन ये दवा खाओ फिर मेरे पास आओ। ऐसा होता है ना, एक तो वो दोबारा बुलाना चाहता है, दूसरी बात है वो देखना चाहता है कि पहली दवा का क्या इफ़ेक्ट हुआ इसके जिस्म पे, इसको सूट की कि नहीं की, और तीसरी ये भी वजह होती है कि अगर वो तीनों दवाओं का मुख्तलिफ वक्त मुख्तलिफ देना होना सब कुछ मरीज़ को इकट्ठा पकड़ा दे तो नुकसान क्या होगा, मरीज़ गलती कर सकता है। अब ये सारी सूरतें जो है ना ये इंसानों के साथ हैं, याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला के साथ जो पहली दो चीज़ें शेयर की गई हैं वो तो बिल्कुल नहीं है, कि अल्लाह ताला को पता ही नहीं था कि कल हकीकत बदल जाएगी और उसने आज कुछ हुक्म दिया, हालात बदले तो हुक्म बदल दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी जो सूरत थी कि बाद में हकीकत बदल गई और बात बदल गई, ये भी नहीं। हाँ, ये जो तीसरी सूरत है ना ये है वो जो कुरान पाक में नसख की है। यहूद ने मुसलमानों पर दो एतराज़ किए थे, एतराज़ क्या थे? पहला एतराज़ ये था कि अगर तौरात भी अल्लाह ही की किताब है तो फिर कुरान पाक की ज़रूरत क्या है? दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब हम जो तौरात सिखा रहे हैं तो अब कुरान सिखाने की क्या ज़रूरत है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये एक ही मैसेज है। एक ये बहुत बड़ा एतराज़ था उनका। दूसरा ये था कि कुरान पाक ही में कुछ आयतें वक्त के साथ बदल क्यों जाती हैं, और पीछे सोच सारी बातों में क्या थी कि कुरान पाक को मशकूक कर दो और इस दावत की तरफ लोग ना जाएं। जब दीन ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि लोग फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसी की बात बता दी कि मा ननसख मिन आयतिन। देखिए लफ्ज़ माँ से बात शुरू होना बहुत अहम है। नो के साथ बात शुरू हुई है या जो भी, यानी नहीं हम मनसूख करते, ये भी इसका तर्जमा हो सकता है, और जो हम मनसूख करते हैं ये भी इसका तर्जमा है। मुराद ये कि जोर दिया जा रहा है कि जो कोई भी हुक्म हम मनसूख कर देते हैं, कोई आयत पहले थी और अब नहीं है, या हम उसको भुलवा देते हैं, तुम ये देखो अल्लाह के बंदो कि नाती भी खैर मिन्हा। देखिए आपके शौहर आपसे कहें कि आपके जहेज़ का सारा फर्नीचर फेंक दिया जाएगा तो आपके दिल को हाथ पड़ेगा, हाय हाय ये क्या किया आपने। लेकिन साथ ही वो खबर सुना दें कि इसके बाद आपका सारे घर का नया फर्नीचर 2 दिन में पहुंच जाएगा, खुशी होगी। अब आप यहीं रहें हैं, लेकिन सोच से ये खुश हो रहे हैं ना कि पुराना फर्नीचर जा रहा है। असल बात क्या है, नाती भी खैर मिन्हा। इंसानी मामलात में हर लम्हे जो तब्दीलियां हो रही हैं ना, उसमें से असल देखने की चीज़ क्या है कि जो अगली चीज़ आ रही है वो पिछली से बेहतर है कि नहीं। अगर अगली चीज़ बेहतर है, अहू मिसलिहा, या उसी जैसी है, तो जाने का क्या गम। आपने एक प्लेट कई दिन से इस्तेमाल कर ली थी, वो प्लेट कोई ले गया, फिर उसी के बदले वैसी ही प्लेट ला दी या उससे बेहतर ला दी, आपका तो कुछ नहीं गया। एतराज़ जिनको करना होता है वो छोटी छोटी बातों पे करते हैं। कोई नबूवत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें नसख का हुक्म ना आया हो। तो अमूमन नसख क्यों होता था, उसके मकासद क्या थे? 2 बड़े मकासद थे नसख के। पहला क्या था कि वक़्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ चलने के लिए, अपडेट करने के लिए, और दूसरा नसख होता था गलत फहमियों के इजाले के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ आयात को जो मनसूख किया तो उसकी वजह ना तो ये थी कि अल्लाह ताला को पहले से नहीं पता था, या ये भी नहीं थी कि हालात बाद में बदल गए, बल्कि सिर्फ बात यही थी कि जहनी इस्तेदाद को देखते हुए तब्दीली का आदी करने के लिए उनको रखा। तफसीर कुर्तुबी है अरबी की, वो कहते हैं कि लम तकुन नबूवतुन कत्तुन इल्ला तनासखत। कोई ऐसी नबूवत नहीं आई जिसमें नसख और रद्दो बदल के हुक्म ना हो। लेकिन बाज़ लोग इसी चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाने का ज़रिया बनाने लगे। इसके बाद हुआ क्या कि ये बात अब इतनी अहम हो गई कि आज के दौर में अगर किसी को ये नहीं पता ना कि कौन सी आयत नासिख है और कौन सी मनसूख है। नासिख होती है जिसने मनसूख किया, और ये बाद में नाजिल होती है। दो लफ्ज़ सोचें, एक है नासिख, नासिख फाइल का वजन है मनसूख करने वाली। मनसूख को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? जैसे किसी हुक्म को ख़त्म करना हो तो कैसे बोलेंगे? एक है कैंसलर, कैंसल करने वाली आयत, जिसने पहले हुक्म को कैंसिल कर दिया। नासिख आयत हमेशा बाद में नाजिल होगी और मनसूख आयत पहले होगी ना। मैंने सिंपल मिसाल आपको दी कि आप सुबह अपने शौहर को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा कि रात को 2 किलो गोश्त ले आए। मिसाल दे रही हूँ, वैसे आपको तो ये मिसालें भी अजीब लगेंगी कि ये कौन से शौहर हैं जो गोश्त भी लाते हैं। आजकल के तो नहीं लाते, चले शौहर बेगम को कह देते हैं फिर तो ठीक है ना, चले इस गोश्त सब्जी से निकल ही आए तो बेहतर है। आप कहते हैं कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक कर लूँगी, ये आपने सुबह हुक्म दे दिया। बाद में आप जहाँ गई थी आप स्ट्रक हो गई, आप शौहर को फ़ोन करते हैं कि देखिए मैं आज बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकूँगी, आपको पिक करना पड़ेगा। पहला हुक्म कि मैं स्कूल लाऊंगी, ये मनसूख हो गया आपके दूसरे हुक्म से कि आप ले आइए। तो दूसरा हुक्म नासिख है, पहला मनसूख है, और जाहरी बात है कि नासिख बाद में आएगा तो मनसूख करेगा ना। तो बस ये बात है, हर आयत जिसने पहले हुक्म को मनसूख किया वो बाद में नाजिल हुई, और जो पहली हुक्म थी वो पहले हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा एक शख्स को मस्जिद में वाज करते हुए देखा। आपने लोगों से पूछा कि ये क्या करता है? लोगों ने कहा कि वाज़ो नसीहत कर रहा है, सिखा रहा है। आपने फरमाया नहीं, ये कोई वाज़ और नसीहत नहीं करता, बल्कि ये कहना चाहता है कि मैं फलां बिन फलां हूँ, मुझे पहचानो, यानी शोहरत हासिल करना चाहता है, बस अपना नाम बड़ा करना चाहता है। अब ये हज़रत अली ने इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं की, उसको बुलाया, उसको कहा ये बताओ कि क्या तुम कुरान और हदीस से नासिख और मनसूख अहकाम को जानते हो, तुम्हें पता है कि कुरान पाक के कौन से हुक्म आज भी वैलिड है और जो नहीं है। कहने लगा मैं तो नहीं जानता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हमारी मस्जिद से निकल जाओ और आइंदा कभी यहाँ वाज ना कहो। ये सिर्फ़ एक वाक्य मैंने आपके सामने क्यों रखा, हालांकि ऐसे वाक़यात इतने ज़्यादा हैं कि सहाबे कराम किसी ऐसे शख्स को इल्म देने या लेने का मुतहम्मिल ही नहीं समझते थे जिसको नासिख और मनसूख या शान नज़ूल वाक़यात हालात नहीं पता। क्यों? आप देखिए, एक बंदा कुरान पाक में आयत पढ़ाता है जो मनसूख हो चुकी है और 1 घंटा पूरा उसी पे अमल की बातें लिखा देता है, उसको पता ही नहीं ये मनसूख हो गई है, तो कितना पोल्यूशन है। मैं जब इस वाक्य को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल हिल जाता है। आज बहुत सारे पढ़ने पढ़ाने वालों में से उनका अपना इल्म भी पुख्ता नहीं, और बास बेचारे तो खुद कहते हैं कि हम कहीं से नहीं पढ़े हुए, बस सुन सुना के पढ़ा रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ और मैं आप सबको इस बात की नसीहत करूँगी, जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ वही मैं आपके लिए भी करूँगी, कि जब तक आप खुद एक इल्म के इस तरह के लेवल पे ना पहुंच जाएं कि आपको पूरे कुरान का मिजाज समझ आने लगे, आप आगे ना पढ़ाएं। मदद कर सकते हैं आप, किसी को पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, जगह दे सकते हैं, या कोई ऐसी बात है, कोई छोटा टॉपिक है, आप सब्र की बात कर लें, शुक्र की कर लें, लेकिन कुरान की तफसीर का मामला बहुत मुख्तलिफ है। क्यों? कि आप सही की बजाय गलत काम करके आ जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कच्चे पक्के फल तोड़ेंगे ना तो खट्टे होंगे, इसके लिए जमना पड़ता है। हम दरख्त के साथ लगना नहीं चाहते, मसला क्या है? जो फल दरख्त के साथ लग के पकते हैं ना वो मीठे होते हैं, और जो कच्चे गिर जाते हैं आप उसको किसी भी सब्जी की टोकरी में छुपा दें, कपड़े में छुपा दें, आटे में छुपा दें, वो आम खट्टे ही होंगे। जो लोग इधर उधर से इल्म हासिल कर लेते हैं ना कच्चा पक्का, वो खट्टे आम है, और वो इसलिए दीन की खटास पैदा कर रहे हैं। वो हुक्म समझ रहे हैं, हिकमत नहीं समझ रहे, वो दीन को इस तरह से पेश करते हैं, उनको खुद भी एक खास जगह आके वो रुक जाते हैं। मसलन आप देखिए कि एक पौधा है जो किसी माली की सरकर्दगी में लगता है, उसको काटेगा छांटेगा, ये ठीक है वो ठीक है, वो फ़ायदेमंद होगा, और जो खुद ब खुद रख के किनारे किताबें पढ़ के सीख लेता है, या वो ऐसे ही है कि जैसे सड़क के साथ लगा हुआ कोई खुदरो पौधा, कांटे भी हैं, झाड़ भी है, झंकार, उसको नहीं पता कहाँ से तारा शाख काटनी थी, कहाँ से छोटी थी, अब जो गुजरेगा ना वो उसके कपड़े फटेगा, अटकेगा। इसलिए ऐसे लोग ना हर वक्त अटकते रहते हैं लोगों से, उनको घर वालों से भी चिड़चिड़ाहट होती है, उनको साथ रहने वालों से भी हराम हलाल देस दिस, यानी अपने तौर पे वो बहुत नेक होते हैं और दूसरे भी उनको देख के गिल्ट फील करते हैं कि ये तो हमसे बहुत नेक है, लेकिन वो काबिले बर्दाश्त नहीं होते। वजह क्या कि उन्होंने उस चाशनी को नहीं पाया होता और उसको वो उस सीख नहीं पाते, तो लिहाजा इस बात को कहा। एक और छोटी सी मिसाल आ गई जो मैंने अभी जिक्र किया, कि बाद लोग कहते हैं कि हम दूसरों का सुना हुआ सुनते हैं और उसको लिखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। देखिए, जब हम खाना खाते हैं वो खाना पहले हज़म करते हैं ना, जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारे जिस्म को ताकत देता है, पूरे जिस्म पे रानाई आती है, ताजगी आती है, क्योंकि वो खाना आपने एब्जॉर्ब किया, अब उसका असर आप पे दिखेगा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप जो खाना खाते हैं ना फ़ौरन वॉमिट हो जाता है, होता है कभी क्या आ जाती है, वो क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड आपका बाहर निकल गया, ताकत तो क्या देनी है, आप वॉमिटिंग के बाद जो नकाहत महसूस करते हैं वो है। जो इल्म आप सीख रहे हैं ना पहले उसको डाइजेस्ट करें, वो आपकी शख्सियत में जाए, आपको हिकमतें समझ आए, आपको दीन का असल रूप समझ आए, फिर दूसरों को देंगे ना तो वो सेहतमंद खाना होगा। और दूसरे का सुन के सुनाना ऐसे ही खुदा ना खास्ता जैसे आपने खाना खाया और क्या कर दी, वो खुद भी नहीं पता जितनी बात वहाँ से नोट कर सके थे कर ली, कोई सही की कोई गलत की, कुछ नोट करने में गलत हुई, कुछ बोलने में गलती हुई, तीसरा सवाल स्टूडेंट ने कर दिया जो ज़्यादा आपसे मेंटली स्ट्रांग था, नतीजा क्या हुआ कि एक ख्रियोस बढ़ पाता है। बस लोग इल्म की महफिलों से उठते हैं तो दिल में इस तराब लेके उठते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम आइंदा ऐसी बात ना करना, क्योंकि इससे दीन ख़राब होता है। आज हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये भी है कि वो लोग दीन की तालीम दे रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे भी महफूज रखे कि मैं भी आपके साथ ऐसी कोई बात ना करूं कि जिसको मैं खुद नहीं समझी। आपको पता है कि एक एक आयत के अंदर आपको इस तरीके से गौर करना पड़ता है पूरे, और इसमें कोई चीज़ आप अपनी सोच से नहीं करते, आपके सामने सारे कवायफ होते हैं, कई तफसीरों को आप कंसल्ट करते हैं, इतनी चीज़ों को जज्ब करके फिर उसमें से आप एक चीज़ देते हैं। एक ये कि आप खुद खाना पकाएं, आप देखें आपका किचन भर जाता है, कितना कुछ फैलता है फिर खाना पकता है। और एक ये कि आपको कोई ग्लूकोज की बोतल लगा दे, फ़र्क है ना। जो खुद इल्म सीखने के लिए रिसर्च करना है वो ऐसे ही जैसे किचन फैलाना पड़ता है। और किसी ने आपको सिखाया, यानी किसी की मैंने एक बात सुनी कि किसी इल्म वाले से 1 घंटा बात करना कई किताबें पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? वो आपको उन सारी किताबों का असर निकाल के दे रहा है, एक्सट्रैक्ट है, जूस आपको पिला रहा है। तो बहरहाल नासिख और मनसूख इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये कितनी आयतें हैं, कम है, ज़्यादा है, इस पे हर दौर में मुश्किल रही। शुरू में चूँकि जब दीन इस्लाम पे सहाबा कराम के बाद फिर मुहद्दिसीन का दौर आया, दूसरे लोगों का दौर आया, तो उन्होंने आयात को जमा करना शुरू किया, तो 500 के करीब आयतें बन गई कि ये भी मनसूख, ये भी मनसूख, ये भी मनसूख। ठीक है, अब उसके बाद अगले दौर में फिर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मज़ीद रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि नहीं 500 तो नहीं है। काम करते करते शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसमें उन्होंने अलहयाउल उलूम में बहुत डिटेल से इन मौजूआत पे बात की, तो उन्होंने कहा कि अब पूरे कुरान पाक में सिर्फ 5 आयतें हैं। वो कहाँ हैं? जहाँ जहाँ आएंगी आपको लिखाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला। 3 तरह से नसख होता है, हुक्म मौजूद है, तिलावत मनसूख हो चुकी, ठीक है, आज भी उस अमल पे हुक्म है। वो कौन सी मिसाल है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सूरत अल-अहज़ाब के अंदर वो आयत मौजूद थी कि जिसकी रोशनी में शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करें तो उन दोनों को रजम करवा दो। अश्शेख व शेखतु, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो उनको रजम कर दो। आज ये आयत नहीं है। और हज़रत उमर कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि लोग ये कहेंगे कि उमर ने इस कुरान में इजाफा कर दिया, तो मैं कुरान के शुरू के यानी जो जिल्दें उस पर ये आयत लिखा देता, यानी इतना मुझे यकीन है कि ये आयत थी। लेकिन आज ये आयत पूरे कुरान में कहीं नहीं है। हदीस से ये मसला मिलता है और अमल आज भी होता है। हाँ, गैर शादीशुदा का हुक्म सूरत नूर में आता है। तो ये वो आयतें हैं कि जिस पे अमल आज हो रहा है, लेकिन आयतें हटा दी गई। इसी तरह दूसरी वो सूरत होती है कि जिसमें आयतें मौजूद हैं, हुक्म नहीं है। मसलन बेवा औरत की इद्दत पहले 1 साल की थी, कुरान पाक में आज भी वो आयत मौजूद है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत बकरा ही में पढ़ेंगे। अब उसकी जगह 4 माह 10 दिन की इद्दत की आयत आ गई, दोनों मौजूद हैं। अब जिस बंदे को नहीं पता कि ये 1 साल वाली इद्दत की आयत मनसूख है, वहाँ जब तफसीर पे पहुँचेंगे तो क्या बातें करेंगे? साबित ही करेंगे ना, नहीं बेहतर है 4 माह 10 दिन के बाद कुछ और भी दर ऐसे ही रहे, फिर तावीलात के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर ऐसे भी होना चाहिए, फिर ऐसे बेहतर है, अच्छा ये भी ना करें, एहतियात का ये तकाजा, एहतियात का ये तकाजा, हालांकि वो आयत आज के दौर में नहीं है। तीसरी किस्म की वो आयतें होती हैं कि जिसमें आयतें भी चली गई और हुक्म भी चले गए। सहाबे कराम कहते हैं कि हम इस कुरान पाक में सूरत तौबा के मिसल, यानी जितनी वो बड़ी है या जो उसका मजमून है अल्लाह आलम, कहते हैं कि सूरत तौबा जैसी एक पूरी सूरत हम पहले कुरान पाक में पाते थे और फिर वो पूरी की पूरी उठा ली गई। और आपको बात बताई थी कि एक सहाबी एक आयत पे आके अटक गए, तो वो आयत बाद में मंसूख हो गई थी। होता भी यही था कि जब कोई आयत कुरान पाक से मंसूख होती थी तो हाफिज़ों के जहनों से भी निकल जाती थी, अगर कहीं लिखा होगा या लोगों ने उसको जमा भी किया होगा तो वो चीज़ भी उसमें निकल जाती है। तो बहरहाल ये छोटा सा एक खुलासा था नासिख और मनसूख का, और इसकी अहमियत बहुत है। फिर उसके बाद देखिए, आपको बात वाज़े हो गई है ना, और इस पे इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर रखी तो इसी कोर्स के दौरान आपको एक टॉपिक पे कुछ लेक्चर्स दिलवाए जाएंगे, तो उससे आपके ऊपर ये मज़मून और भी इस तरह के और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्थ, क्या तुमने नहीं जाना कि अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों ज़मीन की बादशाही? वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली और कोई दोस्त नहीं है। असल में ये पिछली ही आयत के ऊपर तबसरा है कि क्या तुम इस बात पे इतराज़ करने लग गए हो कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म देने के बाद वापस क्यों ले लिया? उसके पास तो आसमानों ज़मीन के सारे खजाने हैं, यानी वो चाहे तो इस पूरी दुनिया को हटा के मिटा के एक नई दुनिया बना दें, क्या वो कादिर नहीं है इस पे? पूरा कादिर है, मुमकिन है उसको, वो बिल्कुल उसके लिए ये मुमकिन है। तो फिर तुम क्यों एतराज़ करते हो? मैं इंसानी सोच के नाते से एक छोटी सी और मिसाल दे देती हूँ कि बिलफर्ज़ मैं एक किताब लिखती हूँ, मुझे जो आज के दौर में इल्म था, समझ थी, जो मैं कर सकी उसको जमा किया, मैंने उसकी पूरी रिसर्च करके एक किताब छाप दी। अल्लाह ने चाहा वो किताब जो है वो कुछ ही महीने में पूरी हो गई। ख्याल हुआ कि अब एक दफ़ा और छपानी चाहिए। क्या हर दफ़ा अगली किताब से पहले राइटर या पब्लिशर या कुछ और नए लोग उसमें मज़ीद इजाफे नहीं करते? आप किसी भी बुक को खोलें, उसमें लिखा होता है पहले से ज़्यादा वजाहत के साथ, या एक चैप्टर और ऐड कर दिए गए, या गलतियों से पाक, या कभी उसमें कुछ ऐड ऑन होता है और कुछ चीज़ें निकल भी चुकी होती हैं। तो जब मेरी किताब है जिसमें मैं रखूँ, मैं छिपाऊँ, मैं उसकी मुख्तसिर कर दूँ ना करूँ, मैं उसको कलर्ड में छपवा लूँ, ब्लैक एंड वाइट में छपवा लूँ, और मेरी हैसियत ही क्या है, तो क्या आसमानों वाला और ज़मीन को पाने वाला क्या वो ये सब कुछ नहीं कर सकता? इसलिए इन बातों पे एतराज़ ना किया करो। उसके लिए आसमान और ज़मीन में किसी चीज़ में कोई तब्दीली करने में कोई नहीं है। कहीं की ज़मीन को हिलाए और जलजले से तबाहो बर्बाद कर दे, कहीं बारिश हो जाए, कहीं ज़मीन हो जाए, उसकी मर्ज़ी है। एक तो इसका ये मतलब है नासिख और मंसूख के नाते से। दूसरे इस आयत का ताल्लुक यहूद के उस एतराज़ पे भी है जो पीछे से चलता आ रहा है। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी के ऊपर हसद करते थे और कहा कि इन पे ही क्यों आई और अल्लाह ताला को कोई और नहीं मिला। तो उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि जब मेरा इख्तियार सारी दुनिया पर है तो क्या कुरान कहाँ उतरना है, वही किस पे उतरनी है, नबी किसको बनाना है, क्या मैं इस पे कादिर नहीं हूँ? ये गलती से नबी नहीं बने, ये अल्लाह का फैसला है। इसलिए कि वल्लाहु यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा, आयत 105 में हमने देखा कि अल्लाह ताला तो ख़ास कर लेता है अपनी रहमत जिस पर चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल नज़ीम, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े फजल वाला है। आप देखें तो ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह का फैसला है ना। सूरज कितना बड़ा होना चाहिए था, किसका फैसला है? चांद कैसा हो, अल्लाह का फैसला है। मैं और आप कैसे हों, हम औरत हों या मर्द हों, हमारी शक्ल व सूरत कैसी हो, हम किसके फैसले हैं? दुनिया में आपको हर तरफ चलते फिरते अल्लाह ताला के फैसले दिखेंगे। तो जिस तरह आसमान का सूरज, इसी तरह ज़मीन पर भी चमकते हुए सूरज होते हैं, और वो कौन है? अल्लाह के चुने हुए बंदे। इसीलिए अल्लाह के नबी को सिराजम मुनीरा कहा गया कि जिस तरह लोग आसमान के सूरज से हिदायत हासिल करते हैं, रोशनी लेते हैं, इसी तरह लोग आपकी ज़िंदगी से रोशनी हासिल करेंगे। और इन चेहरों को भी रोशन कर दिया जिन्होंने आपकी बात को माना। तो ख़ास बातें ख़ास लोगों के अंदर होती हैं। याद रखिए कि ख़ास लोगों के अंदर ख़ास अमाल हुआ करते हैं। अल्लाह ताला किसी को किसी की आंखों की वजह से नहीं चुनता, किसी को उसके होंठों की रंगत की वजह से नहीं चुनता। अगर अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने उस दौर के लोगों पे चुना तो ये आपका अखलाक का हुसन था, ये आपके मैनर्स थे। अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास शख्सियत देकर भेजा, आपके अंदर वो अखलाक थे जिसके लिए आपको भेजा गया। हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु, बेशक मैं भेजा गया ताकि मैं अखलाक को मुकम्मल करूँ। वो कौन से अखलाक थे? वो इखलास था, वो इस्तकामत थी, वो तड़प थी इंसानियत के लिए दिल में। वो आपके दिल में एक जा ऐसी खलिश थी कि मैं कुछ करके जाऊँ इस दुनिया से, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। तो इस पे जिनको एतराज़ है फिर वो जाके आपको इसे जगह से हटा के देख ले। लेकिन असल बात है कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, क्या आप गम ना करें, इनको छोड़ दें इनके हाल पे। हाँ, जो बंदा अल्लाह की इस ज़ात पे राज़ी नहीं, अल्लाह ताला के इस काम पे राज़ी नहीं, फिर वो कोई भी अगर चाल चलता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको फिर कोई मदद नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई काम दीन के नाम पे करे, ऐसे दीन में फिर अल्लाह ताला कोई बरकत भी नहीं डालेगा और ऐसे शख्स को कोई मदद भी नहीं मिलेगी। यहाँ एक लफ्ज़ आया वली और एक आया है नसीर। वली कहते हैं हिमायती को, मदद करने वाला, जो आपकी पुश्त पनाही करे, आपके पीछे से भी आपको अच्छा कहे, लोगों के सामने भी आपको अच्छा कहे। और नसीर है कंटिन्यू, कंटिन्यूटी, जैसे फ़ाइल है ना रहीम, ये सारे वज़न अगर आप याद रख लें ना, नसीर, फ़ाइल, रहीम, बशीर, तो इनमें तसलसल होता है, दवाम। यानी नसीर कहते हैं वो नासिर या वो मदद करने वाला जो किसी हाल में अपनी मदद ना छोड़े। इंसानों के साथ मामला क्या होता है, आज आप किसी को एग्री करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, कल आपका दिल खट्टा होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो मुसलसल हिमायती हूँ और ऐसे लोगों की हिमायत मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जैसे नसीर है तो उसका ऑपोजिट हो गया ना कि ला नसीर, तो मतलब यह है कि फिर मुसलसल इनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई खैर नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद फरमाया, अम तुरी दून अन तसलू रसूलकुम, क्या तुम ये इरादा करते हो कि तुम रसूल से सवाल करो, कमा सुईला मूसा, जैसे सवाल किए गए मूसा से, मिन कबलू इससे पहले, जाओ फिर कर लो। ये नहीं लिखा हुआ, ये महजूफ़ है, करना है तो फिर जाओ कर लो, लेकिन इंजाम समझ लो। वमई यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई कुफ्र को ईमान के साथ बदल देगा, फ़कद दल्ल सवा सबील, बस तहकीक वो सीधे राह से भटक गया। ये है तीसरा शोशा यहूद का। अभी तक हमने इस रुकू में दो देखे, पहले रायना कह के तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए, दूसरा शोशा छोड़ा उन्होंने, कुछ दिन गुजरे, ज़रा ठंडी बात हुई तो फिर हवा भर दी, किस तरह करके, नासिख और मनसूख की बात करके, और ख़ास तौर पे उस मौके पे जब किबले की तब्दीली की बात हुई। अब थोड़े दिन ज़रा वो गर्मा गर्मी रही, सोसाइटी में खूब बातें हुई, लोगों में खूब शक शुबे पैदा हुए, लोगों ने कहा ये वाकई इतने इतराज़ हैं तो क्या ये अल्लाह के नबी का कोई काम ठीक तो नहीं होगा। कुछ अरसा गुजरा तो फिर हिम्मत फिर भी नहीं हारते थे, करते क्या थे। रिवायत में आता है कि यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इनाद की वजह से कहा, इनाद कहते हैं दिल में कुछ रख के, यानी किसी को चेक करने के लिए या बुरी नीयत से, कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर एक ही दफ़ा तौरात नाजिल हो गई थी, तो ये आपके ऊपर कुरान किस्तों में क्यों आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके क्यों आ रहा है, 22 साल कुछ महीने क्यों लग रहे हैं, ये इकट्ठा क्यों नहीं आ गया। और ये सवाल बाज़ जगह खुद करते थे, बाज़ जगह कुछ बड़े मुखलिस सहाबा को आगे कर देते थे। देखिए कुछ लोग दो कश्तियों के सवार होते हैं, इंसान कई कश्तियों में भी सवार रह सकता है, कोई हर्ज नहीं, किसी एक वक्त में एक कश्ती में बैठ जाए, दूसरे वक्त में दूसरी कश्ती में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बड़ा सख्त खतरे में है जो एक ही वक्त में दो कश्तियों में बैठे, एक कश्ती इधर जाएगी दूसरी उधर, वो ये बीच समंदर में गिरेगा। कुछ लोगों का हाल मदीना में अभी तक ऐसा ही था कि वो दोनों को वेरीफाई करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से, आपकी तालीमात से भी उनको इत्तेफाक था, और वो ना भी इत्तेफाक होता वो बात थी ही इतनी सॉलिड के उनका दिल मानता था उसको, लेकिन पुरानी मोहब्बतें नहीं छूटती थी। अब ऐसे लोग जब बैठते तो निजी महफिलों में फिर गुफ्तगुएं होती, अच्छा भाई सुनाओ आजकल क्या हो रहा है, ये क्या सिखा रहा है तुम्हारा नबी आजकल तुम्हें, अच्छा ये बातें हो जाती ना। अब वो भोले भाले लोग बता देते अपने जोश में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वहाँ क्योंकि यहूद अहले किताब थे, जहन में रखिए आम लोगों से उनका इल्मी मेयार बेहतर था, वो क्या था वो एक अलग बहस है। ज़रा जाओगे ना तो कल ज़रा ये पूछना, भाई क्या पूछे, ये पूछना कि ये क्या बात है, मूसा पे तो सारी तौरात एक ही दफ़ा आई, देखो हमारा नबी कितना अच्छा था, तुम क्या थोड़ा 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 करके लगे हुए हो कि भाई अभी कुरान पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा आप सोचे जिसने ये बात कही हो के मुकाबले में एक बिल्कुल न्यू कमर है या जो भी दीन की तरफ नया नया आना शुरू है, शक आएगा ना, वाकई ये तो बात है। देखो हम तो इस काम को फौरन झटपट कर देते हैं, और ये नबी अब इतना लंबा करा रहा है, अब ये बजाहर एक सवाल था, वो आके भोलपने में भी कह देते, कभी कोई नाफिक होता तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता, लोगों के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, वो आके ये सवाल पूछते, अल्लाह का नबी उस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे तबसरा क्या देते हैं, ये काबिले गौर है। वमई यतबद्दलिल कुफ्र, कौन सा कुफ्र है इधर, यहाँ कोई अल्लाह का इनकार है, नो, क्या रसूल का इनकार है, नो, इनकार इधर क्या है, बेकार किस्म के सवाल पूछने। पीछे वाली आयत से आखिर वाले हिस्से का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, ये चीज़ अभी से आप अपने जहन में रख लें कि कोई भी आयत जब हम पढ़ते हैं ना, बज़ाहर एक आयत में दो तीन छोटे छोटे टॉपिक भी होते हैं, जैसे अभी इस आयत को हम अपेरेंटली देखें तो लगता है अच्छा पहले हिस्से में तो सवाल की बात है, अच्छा कोई सवालों की, क्योंकि उर्दू में हमें सवाल समझ आता है, मूसा का लफ्ज़ भी समझ आ रहा है, रसूल का भी आ रहा है, अच्छा ये आयत के आखिरी हिस्से में कुफर की बात आ गई। अब कोई बंदा तफसीर करते हुए जिसको इस हालात का नहीं पता, जिस हालात में ये आयत नाजिल हुई, तो वो क्या पेश करेगा इसकी तफसीर में, पहले सवालों पे बात करें, फिर वो सवाल इतने लंबे चले, ये कर सकते वो कर सकते, फिर उसके बाद अगले हिस्से में आए तो कुफर की किस्में बयान करें, होती है ना चार किस्में जो पीछे हमने देखी थी जहाँ कुफर की आयत, वो असल टेक्स्ट सामने शायद ही इसमें आए कि यहाँ कुफर किसको कहा गया, कि सवाल इस नीयत से पूछना कि फितना फैले, ये है यहाँ कुफर, दिल में कुछ और रखना और जाहिर कुछ और करना, ये है कुफर। इसी तरह तीसरी सूरत है इधर कुफर की, कि सवाल तो पूछ लेना पर अमल ना करना या नियत ना होना, ये सारी कुफर की बातें हैं कि चलो जाके ज़रा पूछते हैं। ये नए इस शहर में आए हैं दर्स के लिए या स्पीच के लिए या 3 रोज़ की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ बहुत बड़े स्पीकर आए हैं, चलो ज़रा जाके इनका भी इल्म देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टोर से खाना चाहिए या अमेरिकन से खाना चाहिए। चलो इनसे भी जाके पूछ आते हैं कि मॉर्गेज पे घर ले सकते हैं कि नहीं। ये पेट 3-4 सवाल लोगों ने अपनी पॉकेट में रखे होते हैं। जो नया बंदा उनको दीन के नाम से मिलेगा फौरन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? नहीं पता? आप कब से हैं इधर? 20 साल से। तो 20 साल में आपको किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया? नहीं, असल मसला नहीं है कि जवाब नहीं मिला हुआ, मानना नहीं है। ऐसे यकीन करें, हमारे 50% से ज़ायद सवालात आम तौर पे भी ऐसे ही होते हैं। कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हैं, क्या है, कितने बहन भाई हैं? इधर से उठ के दूसरे टेबल पे बैठेंगे, अच्छा खैर से क्या हाल है, कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, फिर बाद में पूछें, किसी का कुछ भी नहीं याद होता। दुनिया के सवाल भी बेकार करते हैं और दीन के भी सवाल अमूमन वही कर रहे होते हैं कि जिसको लोग ये देखना चाहते हैं कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए करते हैं। एक और किस्म होती है गलत तरीके से सवाल करने की कि चलो ज़रा इनका अकीदा चेक करते हैं। घर से सोच के आते थे कि ये सवाल ज़रूर पूछना उनसे, अगर इसका जवाब आ गया हमारी मर्ज़ी का तो इसका अंदर इनका अकीदा ठीक है, और अगर इसका जवाब आ गया दूसरा तो कहना नहीं, हमें पहले ही पता था कि इनका तो फलां अकीदा है। यानी बाज़ सवाल अगले बंदे के अकीदे या उसके मसलक को चेक करने के लिए आते हैं, जिसको सिर्फ फिकही सवालों की रोशनी में रख के लोग पलट जाते हैं। और याद रखिए, ऐसे सवाल अमूमन मजहबी तबके की तरफ से आते हैं। कहीं भी कोई अल्लाह का बंदा होगा ना, बड़ी जो बात कहने लगी हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगी हूँ, कि जहाँ कहीं दीन का कोई नया काम शुरू होगा, आमतुन नास, वो लोग जो जहालत की ज़िंदगियाँ बसर करके थक चुके हैं, मारे हुए डिप्रेशन के मारे, औलादों के गम, शोहरों के गम, दुनिया के ढकेसले, वो खुश होते हैं कि चलो शुक्र है अल्लाह का कोई दीन की बात सीखेंगे। और वो लोग जो दीन से किसी तरह जुड़े होते हैं वो परेशान होते हैं। यानी ये वर्ल्ड वाइड हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दीन वाले परेशान हो रहे होते हैं और दुनिया वाले खुश हो रहे होते हैं कि चलो हमारा काम हो जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने सवाल किया और इस नीयत से किया कि इससे फ़ायदा नहीं उठाना, तो बस समझ ले कि जहाँ से ईमान मिलना था वहाँ से नाशुक्री लेकर आ गया। अल्लाह अकबर। फ़कद दल्ल सवा सबील, तो वो सीधी राह से भटक गया। और बास लोग अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें और उसकी मसलहतें जानना चाहते हैं। नहीं, क्यों हुक्म दिया? आप साबित करें इसमें हिकमत क्या। बास लोग कहते हैं जी, ये ईद कुर्बानी जो ईद उल अदहा है, उसमें कुर्बानी के जानवर जो ज़िबह किए जाते हैं, इतना गोश्त ज़ाया होता है, इतना गंद पड़ता है, और आपको पता है कि दुनिया के फलां खित्ते में इस वक्त भूख है या वहाँ घर नहीं है, ऐसा करें इस सारे पैसों कि जो इस साल कुर्बानियाँ करनी थी, आप वहाँ जाके किसी को सड़कें बनवा दें या घर बना दें, तो इस कुर्बानी की क्या हुक्म है? मैं मिसाल आपको दे रही हूँ। जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात में अपनी मर्ज़ी से हिकमतें मालूम करे और उसके अंदर मशवरे दे, ये भी ईमान के बदले कुफर को लाना है। इंसान का काम क्या है? समेना व ताना, सुनो और मान जाओ। जो बात अल्लाह ने कही उसको मान जाओ, हिकमतें मत मालूम करो, मसलहतें मत मालूम करो। तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है, तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है। देखिए हमारा पूरा सर कितना है, 2 बालिशतों में आ जाता है ना, हैंडफुल। उसके अंदर देखें कि ब्रेन कितना होता है, आपने कभी बकरे का भेजा देखा होगा? इतनी बड़ी सिरी में से इतना सा निकलता है, पकेगा तो शायद वो एक ऑमलेट के बराबर बनेगा, इतनी सी। और इंसान का दिमाग तो उसी के करीब है, गूदा है, कुछ भी नहीं है। इतने से दिमाग में इतनी बड़ी यूनिवर्स और इतने बड़े मालिक की हिकमतें कैसे समझ आए? ये तो ऐसे जैसे आपका 1 साल का बच्चा आपसे कोई ऐसा मसला पूछे कि पहले मुझे साबित करे ये क्या है, फिर मैं बात मानूंगा। तो आप कहेंगे बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अब ये बात नहीं समझ आ सकती। कोई प्रेप का बच्चा हो और वो MA के स्टूडेंट से कहे कि जो तुम्हारी किताब की बातें हैं वो मुझे सिखाओ, मान जाइए कि हम छोटे हैं, जिंदगी में हर बात समझ नहीं भी आती तो बस उसको मान जाओ और कभी भी इन लोगों की बातों में ना आओ। और ऐसे लोग फिर मुनाफिक बन जाते थे। ये जो कुफर है ना इधर, ये असल में फिर उनके असल ईमान को निफाक में बदल देता था। और फिर वो बेचारे मुजब्जबी नबई नसालिका ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई, सूरत निसा में छठे पारे की बिल्कुल आखिरी आयतों में आता है कि ये मुजब्जब है, तजब्जब का शिकार है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी यहूद से सुनते हैं कभी मुसलमानों से सुनते हैं और उनको नहीं पता कि हम किधर जाएं और किधर जाएं। और चूंकि शैतान का गलबा ज़्यादा होता है, बुराई में कशिश ज़्यादा होती है, कितने ही ऐसे लोग हैं कि फिर ईमान को छोड़ के वो कुफर में चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे। असल में यहाँ फिर मुसलमानों को ही कहा गया तुम कुम कुम, ये फिर दूसरी जगह ये बात आ रही है कि गलती उधर यहूद ने की थी राय ना कहने की, उसको बदला और टोक दिया मुसलमानों को। यहाँ भी यही है, देखो पूछते वो हैं लेकिन तुम उनकी बातों में आके अब ऐसी बातें ना करना, ये बेहतरीन अंदाज होता है। आपके बच्चे कभी किसी की शिकायत लगाए ना, तो आप कभी उस थर्ड पर्सन को बुरा ना कहें बल्कि इनको कहें कि तुम लेसन लर्न करो, तुम इससे सबक हासिल करो। इससे इंशाल्लाह ताला फिर दूसरों की बुराइयाँ छोड़ के इंसान अपनी फिक्र करने लगता है।